एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार, अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
ज्ञान गोष्ठी में सभी सुनने वालों का स्वागत है।
आज हम एक बहुत छोटी सी किताब है लेकिन विचारों से एकदम भरी हुई, उसकी गहराइयों में उतरेंगे।
बिल्कुल, किताब का नाम है क्लासिक्स, अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन, और इसे लिखा है दो जाने माने विद्वानों ने, मैरी बियर्ड और जॉन हेंडरसन।
क्लासिक्स, अच्छा, ये शब्द सुनते ही शायद कई लोगों के मन में वो धूल भरी पुरानी किताबें आती होंगी।
हाँ, या टूटी फूटी मूर्तियां, ग्रीस और रोम की दुनिया।
हाँ, वही जो लगता है कि अब बस इतिहास का हिस्सा है, थोड़ा आज के जमाने से कटा हुआ सा, शायद उबाऊ भी।
हाँ, अक्सर यही धारणा होती है, लेकिन ये किताब, आप देखें, इसी सोच को बदलने की कोशिश करती है।
अच्छा,
कैसे?
ये कहती है कि क्लासिक्स कोई म्यूजियम में रखी बंद चीज नहीं है,
बल्कि एक जिंदा बहस है, एक ऐसा संवाद जो हजारों साल से चल रहा है और आज भी हमारी राजनीति, हमारी संस्कृति,
यहां तक कि हमारे सोचने के तरीकों पर भी असर डाल रहा है।
बिल्कुल, ये सिर्फ अतीत को जानना भर नहीं है, बल्कि ये समझना है कि उस अतीत को आज हम कैसे देखते हैं और क्यों देखते हैं।
तो मतलब ये आज भी उतनी ही प्रासंगिक है ये किताब, क्योंकि ये हमें सिखाती है कि अतीत से बात कैसे की जाए, उसे समझा कैसे जाए।
सही कहा।
चलिए लेखकों के बारे में थोड़ी और बात करते हैं। मैरी बियर्ड का नाम तो मैंने सुना है, क्लासिकल स्टडीज में काफी मशहूर है वो।
हाँ बिल्कुल, खासकर अंग्रेजी दुनिया में। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, कई बेस्ट सेलिंग किताबें लिखी हैं उन्होंने, टीवी पर भी काफी नजर आती हैं।
हाँ,
उनकी खास बात यह है कि वो मुश्किल अकादमिक बातों को भी आम लोगों के लिए बड़ा दिलचस्प बना देती हैं।
अच्छा।
वो सिर्फ बड़े राजाओं या दार्शनिकों पर ही फोकस नहीं करती, बल्कि आम लोगों, महिलाओं, गुलामों की जिंदगी, उन पर भी ध्यान देती हैं, जो अक्सर इतिहास के पन्नों से गायब रहते हैं।
ये तो बहुत अच्छी बात है। और उनके सहलेखक जॉन हेंडरसन,
हाँ, जॉन हेंडरसन, वो भी कैम्ब्रिज में ही प्रोफेसर रहे हैं। पब्लिक में शायद उतने जाने पहचाने ना हो, पर अकेडमिक हलकों में उनका बहुत सम्मान है। वे लैटिन साहित्य, खासकर कविताओं की, अपनी गहरी और कभी कभी थोड़ी, कह सकते हैं, जटिल व्याख्याओं के लिए जाने जाते हैं।
अच्छा,
उनका ध्यान भाषा की बारीकियों पर और उसके अलग अलग मतलब कैसे निकल सकते हैं उस पर ज्यादा रहता है।
तो इन दोनों का साथ आना, ये कॉम्बिनेशन तो कमाल का होगा।
हाँ, यही इस किताब को खास बनाता है। एक तरफ मेरी बियर्ड की वो सुलभ शैली, विषय को रहस्य से बाहर निकालने का हुनर,
और दूसरी तरफ जॉन हेंडरसन की वो वैचारिक गहराई, भाषा पर पकड़।
बिल्कुल, ये दोनों मिलकर क्लासिक्स को सिर्फ तथ्यों के संग्रह की तरह नहीं दिखाते, बल्कि एक ऐसे फील्ड की तरह पेश करते हैं जहां लगातार सवाल पूछे जाते हैं, बहस होती है। उनका मानना है कि क्लासिक्स का अध्ययन सिर्फ पुरानी चीजों को जानना नहीं है, ये तो सत्ता, संस्कृति और इंसानी बर्ताव को समझने का एक तरीका सीखना है।
तो फिर ये किताब असल में करती क्या है? क्या ये ग्रीस और रोम का इतिहास बताती है शुरू से आखिर तक?
नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, ये उस तरह की सीधी सादी इतिहास की किताब नहीं है।
अच्छा,
ये तो क्लासिक्स के विचार पर ही सवाल उठाती है।
विचार पर मतलब?
मतलब ये पूछती है कि आखिर हम किन चीजों को क्लासिक मानते हैं, ये विषय जिसे हम क्लासिक्स कहते हैं ये बना कैसे, इसमें क्या शामिल है और क्यों।
और शायद सबसे जरूरी सवाल कि हजारों सालों में इस विरासत का मतलब कैसे बदला है?
हाँ, इसे कैसे इस्तेमाल किया गया है और आज इसका क्या महत्व है।
अच्छा, तो ये एक तरह से क्लासिक्स के रोल या उसकी भूमिका पर ही एक गहरी सोच है।
बिल्कुल।
तो ये किसके लिए फिर? क्या सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए?
नहीं, मेरे ख्याल से ये उन सब के लिए है जो प्राचीन दुनिया के बारे में उत्सुक तो हैं, पर शायद ये नहीं जानते कि शुरू कहाँ से करें।
हाँ, या जिन्होंने कभी कला, साहित्य या राजनीति में इसके असर देखे हों और सोचो कि भाई ये सब आखिर है क्या मामला।
हाँ, और ये भी दिखाती है कि जो लोग इस विषय को पढ़ते पढ़ाते हैं, यानी क्लासिसिस्ट, वो असल में करते क्या हैं।
ओके,
ये किताब हमें उस सोच से दूर ले जाती है जहाँ हम मान लेते हैं कि कुछ किताबें या कलाकृतियां बस महान हैं और उनका एक ही मतलब है।
फिक्स्ड।
हाँ, इसके बजाय ये एक वर्कशॉप जैसा माहौल बनाती है जहां अतीत के अर्थ पर लगातार काम हो रहा है, बहस हो रही है, उसे नए सिरे से गढ़ा जा रहा है।
तो ये किताब हमें अतीत को समझने के नए औजार देती है एक तरह से।
हाँ बिल्कुल, ये हमें सिखाती है कि इतिहास को लेकर ज्यादा सजग कैसे बने, ज्यादा आलोचनात्मक, ज्यादा सक्रिय।
किताब खत्म होते होते हम क्लासिक्स को ज्ञान के किसी बंद खजाने की तरह नहीं
नहीं बल्कि पूछताछ और खोजबीन की एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया की तरह देखने लगते हैं।
चलिए तो फिर किताब के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि लेखक अपनी बात कैसे रखते हैं। पहले अध्याय में ही वो बुनियादी सवाल उठाते हैं, क्लासिक्स है क्या?
हाँ, और उनका जवाब बड़ा दिलचस्प है। वो कहते हैं कि ये सिर्फ किसी एक समय या भाषा का अध्ययन नहीं है।
तो फिर क्या है
ये? ग्रीको रोमन दुनिया और उसके बाद की संस्कृतियों के बीच एक लगातार चलने वाला संवाद है।
संवाद मतलब बातचीत?
हाँ, एक तरह की बातचीत। इसी को वो रिसेप्शन कहते हैं।
रिसेप्शन?
हाँ, यानी कैसे बाद के समयों ने क्लासिकल विचारों, कलाकृतियों, कहानियों को अपनाया, समझा और अक्सर अपने हिसाब से बदल भी लिया।
अच्छा, कोई उदाहरण है इसका?
बिल्कुल, वो लाओकून मूर्ति समूह का उदाहरण देते हैं। जब ये मूर्ति 1506 में रोम में जमीन से निकली।
हाँ, मैंने सुना इसके बारे में।
तो इसने उस समय के कलाकारों जैसे माइकल एंजेलो में खलबली मचा दी कि कला कैसे दर्द और भावनाओं को दिखाए। इस पर नई बहस छिड़ गई।
अच्छा,
तो मूर्ति का मतलब सिर्फ पत्थर में नहीं था, वो उसे देखने वालों की आंखों में, उनकी व्याख्याओं में बन रहा था।
ये तो बहुत दिलचस्प बात है कि अर्थ स्थिर नहीं है, वो बनता रहता है। फिर दूसरे अध्याय में वो कैनन की बात करते हैं, मतलब वो लिस्ट जिसमें हम महान क्लासिकल लेखकों और किताबों को रखते हैं।
हाँ, जैसे होमर, प्लेटो, वर्जिल वगैरह। लेखक पूछते हैं कि यही नाम क्यों है इस लिस्ट में, बाकियों का क्या हुआ?
हाँ, ये सवाल तो बनता है, क्यों है यही नाम?
और उनका जवाब है कि ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि ये सबसे अच्छे थे, इसमें इतिहास के इत्तेफाक भी हैं, जानबूझकर किए गए चुनाव भी हैं, और यहाँ तक कि विचारधारा का भी बड़ा हाथ है।
विचारधारा का कैसे?
मतलब कुछ आवाजों को दबाया गया, कुछ को उभारा गया। न जाने कितने लेखक और उनकी रचनाएं थीं जो समय के साथ खो गईं या भुला दी गईं। जैसे वो सैफो का उदाहरण देती हैं, जो लेस्बोस द्वीप की एक महान कवयित्री थीं। आज हमारे पास उनकी कविताओं के सिर्फ कुछ टुकड़े ही बचे हैं।
सच में? पूरी कविताएं नहीं?
नहीं, बस टुकड़े। तो जो क्लासिकल दुनिया हम आज देखते हैं, वो असल में एक बहुत चुनी हुई और अधूरी तस्वीर है।
ये बात तो सोचने पर मजबूर करती है कि हम जिसे पूरा इतिहास समझ रहे हैं वो कितना अधूरा हो सकता है।
अच्छा, तीसरे अध्याय में वो शब्दों पर आते हैं, यानी ग्रीक और लैटिन भाषाएं।
हाँ,
यहाँ भाषा विज्ञान यानी फिलोलॉजी का जिक्र आता है, कैसे विद्वान पुरानी पांडुलिपियों से ग्रंथों का सबसे सही रूप खोजने की कोशिश करते हैं।
ये तो बहुत टेक्निकल काम लगता है।
है भी, लेकिन उनका असली जोर इस पर नहीं है, असली जोर अनुवाद पर है।
अनुवाद यानी ट्रांसलेशन पर?
हाँ, वो साफ कहते हैं कि कोई भी अनुवाद पूरी तरह शाब्दिक या परफेक्ट नहीं हो सकता। हर अनुवाद अपने आप में एक व्याख्या है, एक इंटरप्रिटेशन, और हर व्याख्या अनुवादक के अपने समय, उसकी अपनी समझ और उसके अपने मकसदों से प्रभावित होती है।
इसका कोई उदाहरण?
हाँ, जैसे वर्जिल की मशहूर कविता एनियड की पहली लाइन है, आर्मा विरुम के कानों, यानी मैं हथियारों और उस आदमी का गान करता हूँ। अब इसके अलग अलग अंग्रेजी अनुवादों को देखिए।
अच्छा,
कोई युद्ध पर ज्यादा जोर देता है, कोई नायक की यात्रा पर, कोई उसके भाग्य पर।
अरे वाह, एक ही लाइन के इतने मतलब।
बिल्कुल।
हाँ,
इससे पता चलता है कि क्लासिकल ग्रंथ पत्थर की लकीर नहीं है, वो जिंदा हैं और हर अनुवाद के साथ एक नया रंग, एक नया मतलब पाते हैं।
मतलब शब्दों का सफर भी सीधा नहीं है। अच्छा, चौथे अध्याय में लेखक चीजों पर आते हैं, यानी पुरातत्व,
आर्कियोलॉजी।
हाँ, और उससे मिलने वाली वस्तुएं।
यहाँ भी वही बात है।
क्या बात?
कि चीजें खुद नहीं बोलती, हमें उनके मतलब निकालने पड़ते हैं, और ये मतलब अक्सर बहस का मुद्दा बनते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण वो पोम्पेई शहर का देते हैं, जो ज्वालामुखी के लावे में दब गया था।
पोम्पेई लगता है जैसे समय वहीं थम गया हो।
हमें लगता तो यही है, पर लेखक बताते हैं कि हमारी समझ इस बात से बहुत प्रभावित है कि खुदाई कैसे की गई, क्या चीजें बचाई गईं, और हमारी अपनी आधुनिक कल्पनाएं।
जैसे?
जैसे वो प्लास्टर से बने इंसानी शरीर के कास्ट, वो असल में खाली जगहों में प्लास्टर भरकर बाद में बनाए गए थे, वो असल लाशें नहीं हैं।
ओह, ये मुझे नहीं पता था।
और फिर आता है पार्थेनन मार्बल्स का मामला।
हाँ, एल्गिन मार्बल्स भी कहते हैं ना इन्हें ब्रिटेन में।
जी, ये एथेंस के पार्थेनन मंदिर की मूर्तियां हैं जिन्हें 19वीं सदी में लॉर्ड एल्गिन ब्रिटेन ले गए थे। आज भी ब्रिटिश म्यूजियम में है और ग्रीस उन्हें वापस मांग रहा है।
ये तो बड़ा विवादित मुद्दा है।
बहुत ज्यादा। लेखक इस बहस में किसी का पक्ष नहीं लेते, बल्कि वो दिखाते हैं कि ये पत्थर अब सिर्फ प्राचीन कला के नमूने नहीं रहे।
तो क्या बन गए हैं
ये राष्ट्रीय पहचान? सांस्कृतिक विरासत पर किसका हक है? और साम्राज्यवाद के इतिहास से जुड़े बेहद शक्तिशाली और विवादित प्रतीक बन चुके हैं।
बाप रे।
इनका मतलब लंदन में कुछ और है, एथेंस में कुछ और। ये दिखाता है कि चीजों का मतलब भी जगह और समय के साथ बदलता है।
ये तो वाकई बहुत जटिल मुद्दा है। अच्छा, पांचवें अध्याय में वो बड़ी कहानियों यानी ग्रैंड नैरेटिव्स की बात करते हैं।
हाँ, वो बड़े बड़े आख्यान जो हमने क्लासिकल इतिहास से गढ़े हैं।
जैसे
इनमें सबसे मशहूर कहानी है रोमन साम्राज्य के उत्थान और पतन की, खासकर एडवर्ड गिबन की किताब के जरिए।
एडवर्ड गिबन? हाँ, 18वीं सदी के इतिहासकार।
बिल्कुल। जब वो रोम के पतन का इतिहास लिख रहे थे तो वो सिर्फ रोम के बारे में नहीं लिख रहे थे, वो अपने समय के ब्रिटिश साम्राज्य को भी एक तरह की चेतावनी दे रहे थे।
अच्छा?
ये कहानी इतनी प्रभावशाली हुई कि पश्चिमी दुनिया की अपनी पहचान का हिस्सा बन गई। अमेरिका के संस्थापकों से लेकर नेपोलियन और मुसोलिनी तक कई लोगों ने रोम के इतिहास से प्रेरणा ली या उसे अपने मकसदों के लिए इस्तेमाल किया।
तो लेखक क्या कहते हैं इन कहानियों के बारे में?
वो हमें आगाह करते हैं कि ऐसी बड़ी कहानियां ताकतवर तो होती हैं पर खतरनाक भी हो सकती हैं।
खतरनाक क्यों?
क्योंकि ये अक्सर अतीत को जरूरत से ज्यादा सरल बना देती हैं और राजनीतिक विचारधाराओं को सही ठहराने के काम आती हैं।
ये तो सोचने वाली बात है। और फिर किताब के आखिरी अध्याय में भविष्य की ओर वापसी।
हाँ, इसमें लेखक इन सब बातों को आज के संदर्भ में लाते हैं। वो उन आरोपों का सामना करते हैं जो क्लासिक्स पर लगते हैं।
कैसे आरोप?
कि ये विषय सिर्फ ऊंचे तबके का है, इलीटिस्ट। इसमें नस्लवाद, रेसिस्ट और लिंग भेद, सेक्सिस्ट भरा है, और ये उपनिवेशवाद, कॉलोनियलिज्म से जुड़ा रहा है।
तो क्या लेखक इन आरोपों को मानते हैं?
हाँ, वो मानते हैं कि क्लासिक्स का दुरुपयोग हुआ है, इसे सत्ता और शोषण को सही ठहराने के लिए इस्तेमाल किया गया है।
लेकिन
उनका तर्क है कि क्लासिक्स के अंदर ही वो औजार भी मौजूद हैं जिनसे इन बुरी विरासतों की आलोचना की जा सकती है।
जैसे
बारीकी से पढ़ना, सबूतों की जांच करना, अलग अलग नजरिए समझना। वो इस क्षेत्र में हो रहे नए कामों की तरफ भी इशारा करते हैं।
क्या काम हो रहे हैं?
जैसे ग्रीक संस्कृति पर अफ्रीकी प्रभाव की खोज, नारीवादी नजरिए से पुराने ग्रंथों को पढ़ना, रोमन साम्राज्य को उत्तर उपनिवेशवादी पोस्ट कॉलोनियल दृष्टिकोण से देखना। उनका कहना है कि क्लासिक्स का भविष्य किसी काल्पनिक सुनहरे अतीत से छिपके रहने में नहीं है।
तो किसमें है?
बल्कि प्राचीन दुनिया को आज के जरूरी सवालों, पहचान, सत्ता, लिंग, साम्राज्य पर सोचने के लिए एक प्रयोगशाला, लैबोरेटरी के तरह इस्तेमाल करने में है।
प्रयोगशाला? ये दिलचस्प है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटे तो कुछ मुख्य बातें या थीम्स उभर कर आती हैं।
हाँ, बिल्कुल।
पहली और शायद सबसे जरूरी बात मेरे हिसाब से ये है कि क्लासिक्स कोई मुर्दा विषय नहीं,
हाँ,
बल्कि एक जीवित संवाद है।
सही कहा।
इसकी अहमियत इस बात में है कि हम आज इससे कैसे जुड़ते हैं,
हाँ,
कैसे इसकी लगातार नई व्याख्या करते हैं।
कुछ वैसे ही जैसे हम भारत में अपने महाकाव्यों या पुरानी कहानियों पर लगातार बहस करते हैं और उनसे नए मतलब निकालते रहते हैं, ना?
बिल्कुल वैसा ही। दूसरी बात यह कि क्लासिकल दुनिया कोई आदर्श, पवित्र या एक रूप जगह नहीं थी। वो बहुत विविध थी, उसमें गहरे मतभेद थे, जटिलताएं थीं,
हाँ,
गुलामी थी, महिलाओं को बराबरी के अधिकार नहीं थे।
हाँ।
तो उसे किसी मॉडल की तरह पूजने के बजाय उसकी मुश्किलों और अंधेरे कोनों को समझना ज्यादा जरूरी है। ठीक वैसे ही जैसे हमें अपने इतिहास की मुश्किल सच्चाइयों का सामना करना पड़ता है।
सही बात है।
तीसरी थीम है शक्ति यानी पावर और उसकी आलोचना।
हाँ।
क्लासिक्स हमें दिखाता है कि सत्ता कैसे काम करती है, कैसे उसका गलत इस्तेमाल होता है और कैसे लोग उसका विरोध भी करते हैं, और ये भी कि कैसे अतीत की कहानियों और प्रतीकों का इस्तेमाल बाद में राजनीतिक ताकत हासिल करने के लिए किया गया।
हाँ, जैसे रोम का मॉडल या पार्थेनन की मूर्तियां। ये हमें याद दिलाता है कि इतिहास और संस्कृति हमेशा राजनीति से जुड़े होते हैं, कभी अलग नहीं होते।
बिल्कुल। चौथी बात जो मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगी वो ये कि क्लासिक्स असल में तथ्यों का ढेर नहीं बल्कि एक आलोचनात्मक तरीका है, एक क्रिटिकल मेथड।
हाँ, इसका असली मूल्य शायद जानकारी इकट्ठा करने में उतना नहीं जितना सोचने का एक तरीका सीखने में है।
अपनी मान्यताओं पर सवाल उठाना, सबूतों को गौर से देखना, अलग अलग नजरिए समझना,
ये हुनर आज की दुनिया में कितना जरूरी है जहां हर तरफ से सूचनाओं और दावों की बौछार हो रही है।
सच में। और पांचवी बात, सबूतों का अधूरापन।
हाँ, कि हमें प्राचीन दुनिया के बारे में जो भी पता है वो बहुत कम है, ज्यादातर चीजें खो चुकी हैं।
ये हमें विनम्र बनाता है ना?
बिल्कुल, ये याद दिलाता है कि हम अतीत को पूरी तरह कभी जान नहीं सकते। हमें अक्सर अधूरेपन के साथ ही काम चलाना पड़ता है। ये हमें उन आवाजों या कहानियों की कीमत समझाता है जो शायद पूरी तरह हम तक नहीं पहुंची।
किताब में कई ऐसी पंक्तियां भी होंगी जो सोचने पर मजबूर करती हैं। कुछ यादगार विचार साझा करें।
हाँ, हैं तो कई। पहला तो यही कि क्लासिक्स अतीत के बारे में नहीं है, ये वर्तमान और भविष्य के साथ संवाद के बारे में है।
मतलब असली खेल ये नहीं कि अतीत में क्या हुआ था, बल्कि ये है कि हम आज उस अतीत से क्या मतलब निकालते हैं।
एकदम सही। एक और विचार है, लोकतंत्र का आविष्कार प्राचीन एथेंस में हुआ, लेकिन लोकतंत्र की आलोचना का भी।
ये दिखाता है कि क्लासिकल दुनिया हमें कोई आसान जवाब या आदर्श मॉडल नहीं देती।
नहीं, वो हमें जटिलताएं दिखाती है, बहसें दिखाती है, जिनसे हम आज भी सीख सकते हैं। जैसे लोकतंत्र कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उसकी कमियों पर सवाल उठाना भी उतना ही जरूरी है।
बिल्कुल। तीसरा,
क्लासिकल शिक्षा उत्पीड़न का हथियार भी रही है और मुक्ति का भी।
ये क्लासिक्स की विरासत को लेकर एक बहुत संतुलित नजरिया है।
हाँ, ये मानने के बजाय कि ये पूरी तरह अच्छा है या पूरी तरह बुरा, ये समझना जरूरी है कि इसे कैसे इस्तेमाल किया गया है। इसे लोगों को दबाने के लिए भी इस्तेमाल किया गया और ज्ञान और आजादी पाने के लिए भी।
चौथा विचार भी बहुत दिलचस्प लगता है। हर पीढ़ी क्लासिक्स को फिर से खोजती है और उसमें वही पाती है जिसकी उसे जरूरत होती है।
हाँ, मतलब हम अतीत को निष्क्रिय रूप से ग्रहण नहीं करते, हम सक्रिय रूप से उसमें से वो चीजें चुनते हैं, उन पर जोर देते हैं जो हमारे आज के सरोकारों से मेल खाती हैं।
अतीत का मतलब तयशुदा नहीं है, हम उसे बनाते हैं।
हम उसे लगातार बनाते हैं। और पांचवा, जो पार्थेनन मार्बल्स के बारे में है, वो वाकई आज की दुनिया की सच्चाई बयान करता है।
क्या है वो?
और सांस्कृतिक स्वामित्व पर आधुनिक युद्ध के प्रतीक है।
बाप रे, ये हमें दिखाता है कि कला और संस्कृति कितने ज्यादा राजनीतिक हो सकते हैं।
बिल्कुल।
तो इन सब बातों का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से क्या लेना देना है? क्या ये सिर्फ अकादमिक बातें हैं?
मुझे तो नहीं लगता। सबसे पहली बात तो ये है कि ये हमारी आलोचनात्मक सोच यानी क्रिटिकल थिंकिंग को तेज करती है।
कैसे?
ये हमें सिखाती है कि किसी भी दावे, किसी भी कहानी, चाहे वो नेता का भाषण हो, मीडिया की खबर हो या कोई विज्ञापन, उसे जस का तस स्वीकार ना करें, सवाल पूछें।
हाँ, पूछें कि ये कौन कह रहा है, क्यों कह रहा है, क्या छुपा रहा है।
बिल्कुल।
ये तो बहुत काम का हुनर है आज।
सच में।
दूसरा, ये हमें अपने आसपास की संस्कृति को ज्यादा गहराई से समझने में मदद कर सकता है।
हाँ, जब हम पुरानी शैली के सरकारी इमारतें देखते हैं या फिल्मों कहानियों में ग्रीक या रोमन मिथकों का जिक्र पाते हैं,
तो हम उन्हें सिर्फ सजावट या कहानी के हिस्से की तरह नहीं देखेंगे। हम समझ पाएंगे कि ये उस लंबे संवाद का हिस्सा है जो क्लासिकल दुनिया से चला आ रहा है।
सही कहा। तीसरा, ये हमें समाज की जटिल बहसों में शामिल होने का एक बेहतर तरीका सिखा सकता है।
जैसे
भारत में ही कई परंपराएं हैं जिनकी हम इज्जत करते हैं, लेकिन उनके कुछ पहलू, आप जानते हैं, समस्या भरे भी हो सकते हैं, जैसे जातिवाद या लिंग भेद।
हाँ, ये तो है।
ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम किसी चीज की सराहना करते हुए भी उसकी आलोचना कर सकते हैं। चीजों को सिर्फ अच्छा या बुरा, काला या सफेद में देखने के बजाय उनके मिले जुले रंगों को पहचानना।
ये बहुत जरूरी नजरिया है, संतुलित नजरिया। और शायद चौथा।
हाँ, चौथा ये कि ये हमें खुद को समझने में भी मदद करता है।
खुद को? वो कैसे?
जब हम एक ऐसी संस्कृति को समझने की कोशिश करते हैं जो हमसे इतनी अलग थी, समय में, जगह में, सोच में, तो हम अपनी खुद की मान्यताओं, अपनी आदतों, अपनी संस्कृति पर भी सवाल उठाने लगते हैं।
हाँ, हमें एहसास होता है कि दुनिया को देखने का हमारा तरीका ही एकमात्र या सबसे सही तरीका नहीं है।
बिल्कुल। ये आत्मचिंतन यानी सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए एक अच्छा नजरिया देता है।
तो अंत में अगर मुझसे पूछा जाए कि इस किताब से सबसे बड़ी सीख क्या मिली, तो मैं कहूंगा कि क्लासिक्स सिर्फ अतीत के बारे में जानना नहीं है, बल्कि ये सीखना है कि हम अतीत से सवाल कैसे पूछते हैं,
और वो सवाल सत्ता के बारे में, पहचान के बारे में, समुदाय के बारे में, न्याय के बारे में, वो आज भी उतने ही जिंदा और जरूरी हैं।
बिल्कुल सही कहा। और मेरे लिए वो रिसेप्शन का विचार सबसे ज्यादा असरदार रहा।
हाँ,
कि अतीत का मतलब पत्थर में नहीं लिखा है, उसे हर पीढ़ी, हर समाज, हर व्यक्ति अपने तरीके से गढ़ता है, उससे जूझता है।
इतिहास सीखना कोई पैसिव काम नहीं है कि बस जानकारी निगल ली।
ये एक एक्टिव, रचनात्मक और कभी कभी चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया है।
सही।
और जैसा कि किताब इशारा करती है, अतीत के साथ ईमानदारी से जुड़ना, उससे मुश्किल सवाल पूछना, ये आज के दौर में एक जरूरी, यहाँ तक कि क्रांतिकारी काम भी हो सकता है।
यह हमें याद दिलाता है कि अतीत और वर्तमान अलग अलग डब्बे नहीं है, वो आपस में गुंथे हुए हैं।
हाँ।
इन कनेक्शंस को समझना हमें न सिर्फ अपने आज को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है, बल्कि शायद भविष्य के लिए नए रास्ते सोचने की प्रेरणा भी देता है।
बिल्कुल। और शायद यही वो सोच है जिसके साथ हम अपने सुनने वालों को छोड़ सकते हैं।
हाँ।
क्या
क्या
कि अपने आसपास की दुनिया में, अपनी संस्कृति में, अपनी कहानियों में उन धागों को कैसे पहचाना जाए जो हमें बहुत दूर के अतीत से जोड़ते हैं, और ये सोचें कि आज उन धागों का हमारे लिए क्या मतलब है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।